पृष्ठ संख्या 82, शीर्षक उपसंहार। ब्रजभाषा का काव्य प्रवाह अत्यंत पुरातन एक सहस्र शताब्दी से गतिमान है, जिस धारा में खुसरो की पहेलियां, नामदेव की बाणियां, कबीर की साखियां और भागवत भाषा की दोहा चौपाइयां सामान्यतः चतुर स्तंभ रूप में ब्रजभाषा काव्य प्रसाद के चतुस्तंभ है। ब्रजभाषा काव्य साहित्य के वाल्मीकि और जयदेव की गीत परंपरा के सिरमौन कविवर सूरदास की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में है। अष्टछाप ही नहीं, संपूर्ण कृष्ण भक्ति संप्रदाय में जितने कवि हुए हैं उन सभी में काव्य श्रेष्ठता तथा रचना प्रमाण की दृष्टि से इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। बाल क्रीड़ा प्रकृति का सहसा स्वाभाविक सूक्ष्म सविस्तार चित्रण सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया है, वैसा संसार के साहित्य में दुर्लभ है। यह तो हुई काव्य की बात। भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो काम किया उसका महत्व अपरिमेय है। काव्य में तो ब्रजभाषा का प्रयोग सुर से पहले ही आरंभ हो गया था, पर वह अपभ्रंश के प्रयोग से मुक्त नहीं हुए थे। उसकी परूषता तब भी उसके गले पड़ी हुई थी। ब्रजभाषा में माधुर्य, मार्दव, मर्सीणता, कोमलता और अभिव्यंजना शक्ति भरने का श्रेय यदि किसी को है तो सुर को ही। सुर की भाषा में श्रीमद्भागवत, गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली की मंजुलता है। काव्य में भक्ति की स्रोतस्विनी प्रवाह है तथा पदों में आत्मविभोर कर देने वाला संगीत। उसमें जो कुछ है श्रेष्ठ है, वह अनुपम है, मोल लेने वाला और आत्मसात कर लेने वाला है। इसलिए हिंदी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि सुर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियां सुर की जूठी सी जान पड़ती है। शुक्ल जी की यह उक्ति सूरदास को हिंदी के कवियों में मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित कर देती है। सूरदास की जन्मतिथि, गुलोकवास, जाति कुल, अंधत्व और नाम के विषय में बहुत कुछ विवादास्पद है। भक्तों में आत्मोद्घोष से विरक्ति हमारे देश की संस्कृति है। भक्तों के दैन्य ने इसमें और भी योग दिया है। इस कारण इस देश के लेखकों ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा। उनके व्यक्तिगत जीवन संबंधी सूचना बाह्य साक्ष्य पर ही निर्भर है। सूचनाओं के लिए उनका बहुत उहापोत करना पड़ता है। सूरदास के विषय में भी कवियों को यह सब करना पड़ा है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में इन उहापोतों पर विचार किया गया है और तर्कसम्मत निर्णय दिए गए हैं। मैं प्रमाणित के आधार पर जिन निष्कर्षों पर पहुंचा हूँ तत्संबंधित अध्याय में उद्धृत है। पैराग्राफ चेंज। सूरदास की रचनाओं की संख्या, प्राप्त रचनाओं की प्रामाणिकता तथा सुरसागर के पदों की संख्या के विषय में भी कम मत विभिन्नता नहीं है। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सूरदास को सूरदास भक्त कवि रहने ही नहीं दिया। पृष्ठ संख्या 83, उस पर भी गंभीर चर्चा है। इस विषय में भी विभिन्न विचारकों के मतों की समीक्षा की गई है। लेखकों ने सूरदास की रचनाओं की संख्या 25 तक गिनाई है, किंतु अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के लेखक डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सुरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी को ही प्रमाणित माना है। वस्तुतः यही श्रेष्ठ एवं मान्य भी है। सूरदास प्रज्ञा चक्षु थे, अतः वे स्वयं तो लिख नहीं सकते थे। कीर्तन आदि के समय में वे पदों का गान करते थे। भक्तगण व श्रोताजन उन्हें लिख लिया करते थे। उन लिखित पदों में से जो संग्रहित हुए वे रह गए और बहुत कुछ नष्ट हो गए। आधुनिक काल में उनके पदों की विभिन्न स्थानों से संग्रहित एवं क्रमबद्ध करके छपवा दिया गया है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्करण में 4937 पद ही संग्रहित है। प्रायः ऐसी मान्यता है कि सूरदास ने 1,00,000 पद रचे थे जो उनके अंतःसाक्ष्य सुर सरावली से प्रमाणित होता है, जैसे ता दिनते हरि लीला गाई 1,00,000 बर बंद। पैराग्राफ चेंज। सुर सागर की कथा को भागवत पुराण का स्वच्छंद भावानुवाद कहा जा सकता है, किंतु भागवत के दशम स्कंद की कथा को उन्होंने बहुत कुछ विस्तार दिया है। इसलिए सुर सागर भागवत पुराण का अनुवाद ही नहीं है, सुर की बहुत सी नवीन उद्भावनाएं भी हैं जो भागवत में भी नहीं मिलती। जिनमें प्रमुख रूप से बाल संस्कार, सामान्य शिशु लीलाएं, रूप वर्णन तथा प्रसाधन, चोरी लीलाएं एवं नटखटपन, गोचारण लीलाएं, विविध क्रीड़ाएं, श्रृंगारिक क्रीड़ाएं तथा लोक मंगल परक कथाएं आदि विशिष्ट मानी जाती है। यद्यपि सुर सरावली का कोई हस्तलेख नहीं मिला है, इसका संपादन मुद्रित प्रतियों के आधार पर ही हुआ है। संवत 1880 विक्रमी में दयाराम जी भाई द्वारा इसका गुजराती में अनुवाद भी हुआ है। इस अनुवाद से हिंदी मूल के संपादन में बड़ी सहायता मिली है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूटक पद है जो रस प्रपंच, अलंकार और नायिका भेद का ग्रंथ है। इसमें नायक नायिका कृष्ण और राधा ही है। इसका भी हस्तलेख नहीं मिला है। पैराग्राफ चेंज। सुर सरावली को सामान्यतः लोग सुर सागर का सूची पत्र ही मानते हैं, क्योंकि इसकी पुरानी प्रतियों के शीर्षक और पुस्तिका में सूची पत्र का उल्लेख मिलता है। मित्तल जी की मान्यता है कि सुर सागर के लाख या सवा लाख पदों का सूची प्रतात्मक सार रूप नहीं है, न यह सरावली का दावा ही है। यह होली क्रीड़ा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विनाश का रूपक है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा चुका है कि सरावली सुर सरावली नाम इसलिए नहीं है कि यह सुर सागर का सार भाग है, बल्कि इसका सरावली में सार और सरसी दो छंदों का प्रयोग हुआ है। इन दोनों छंदों में इतना ही अंतर है कि सार के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंतिम स्वर दीर्घ होते हैं तथा सरसी के हरस्व। पाठक जब सरसी को लय से गाने लगते हैं तब सरसी के उक्त अंतिम स्वरों को दीर्घ कर देते हैं, फलतः वह भी सार बन जाता है। पृष्ठ संख्या 84। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से सरावली सार छंद में ही पढ़ी जाती है, अतः सार छंद पठित होने के कारण ही उक्त रचना का नाम सरावली है। इस नाम का आधार छंद है, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, पदावली नामों के आधार छंद ही है। भारतीय साहित्य में ऐसे नामकरण की सुदीर्घ परंपरा पुरातन काल से विद्यमान है। सुर के कथन ताको तत्व सुर सरावली में तत्व का तात्पर्य एक लाख पदों वाला सुर सागर का तत्व नहीं है, प्रत्युत उस हरिलीला का तत्व है जिसका एक लाख पदों में गान हुआ है।